ले आ। पुस्तक किसको चाहिए? चलो ये व्यवस्था रखी, चलो शुरू करें। चलो महावीर भगवान की ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयति शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए हाँ ठीक ठीक, अभी रखो, बाद में आएंगे दे देना, नहीं तो पढ़ो। पिछले 10 दिनों से यात्रा प्रारंभ है और वह सरिता तट की माटी जिसमें कि अपने जीवन को उन्नत बनाने की भावना भाई और भावना भवनाशनी सोमा धरती के संबोधन को सुन करके नहीं आज उधर धूप को देख नहीं रहे, तो अभी सोच के आ रहे हैं। और किसको उधर वो पीछे बैठे हो उसके पास आरन वाले भैया के पास क्या कह रहे थे? भावना माँ धरती के सम्मुख प्रेषित हुई, माँ धरती के संकेत को पाकर के माटी ने अपना जीवन कुंभकार को समर्पित किया और वह कुंभकार इस माटी को उन्नत बनाने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करता है। तो माटी में मिले हुए कंकरों को जो कि शिल्प के निर्माण में बाधक तत्व थे, वह शिल्पी माटी से पृथक करता है और इस पृथक होने के पश्चात जो कंकर क्रोधित थे उनको भी समाधान मिला और इसके बाद माटी को फुलाना है और फुलाने हेतु पानी की आवश्यकता हेतु वह शिल्पी जब रस्सी और बाल्टी को उठाता है तो रस्सी जो है उलझी हुई थी, उलझी रस्सी को सुलझाने का प्रयास होता है और बहुत मेहनत मशक्कत के बाद वह रस्सी सुलझ जाती है। कुप में से जल को निकालने का उपक्रम प्रारंभ होता है तो वहाँ पर कुप में एक बार मछली पड़ी हुई थी जो कि ऊपर आने को मचल रही थी। दृढ़ संकल्प उसने किया और वह कुप के बंधन को छोड़ करके माटी के चरणों में आकर आ गई है और उस मछली ने अपने जब जैसे ही माटी के चरणों में वह मछली आई और उसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। सो लेखनी ने यह सब कुछ देखा और लेखनी कहने लगी, क्या इस समय मानवता पूर्णतः मरी है और दानवता आ उभरी है? निश्चित ही जहाँ से दानवत्ता पलायन हो गई वहाँ दानवता में दानवत्ता रह ही नहीं सकती। सो वसुदैव कुटुम्बकम का दर्शन आज इन आंखों को सुलभ नहीं रहा। इधर इतना अवश्य परिवर्तन हुआ कि धन ही सब कुछ बन गया है। सो पुनः पेज नंबर 82 82 नंबर पेज निकाल लो। सो मछली कहती है कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इस विषय को माँ। सो मछली की प्रार्थना के रूप में माटी कुछ सार के रूप में कहती है, सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तू उसे मान, जिसे बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। सतयुग और कलयुग, अपन कहते हैं सतयुग आ गया, कलयुग आ गया, मुख्यतः हमारी विचारधारा पर बहुत कुछ आधारित है। अगर हमारी निगेटिव विचारधारा है तो हर जगह हमें नकारात्मक ही वातावरण मिलेगा, और सकारात्मक सोच है तो हर विपरीत परिस्थिति में हम सकारात्मक सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको अच्छी भी बात बुरी लग रही है तो समझ लेना उसके भीतर ही कलयुग है। कलयुग की सही पहचान है कि खराबी अखरना लगे। तीर्थंकरों की वाणी, गुरुओं की वाणी जो हमारे हित के लिए है, वही अगर हमें बुरी लगने लगे तो यही कलयुग की पहचान है। तो जहाँ बुरा भी बुरा सा लगने लगे, अर्थात हितकारी लगे, वह सतयुग है। हर बुरी कड़वी की अहितकारी नहीं होती, इससे तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हितकारी होती है। कई बार जो हमें इष्ट होता है लेकिन वो हितकारी नहीं होता। जैसे बच्चा है, मान लीजिए लड्डू बनाते संक्रांत में, तो तिली के लड्डू बन गए। अब लड्डू कितना खाना, तिली के लड्डू इष्ट तो है, किंतु यही ज्यादा मात्रा में भी अहितकारी उसके लिए हो जाएंगे। भोजन करना तो इष्ट है, लेकिन यही ज्यादा मात्रा में हो गया या अपने प्रतिकूल हो गया तो अहितकारी हो जाता है। सो यहाँ पर खराबी अखरने लगे तो उसे तो कलयुग मान, और सतयुग उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगने लगे। इसी बीच में निवेदन करती है मछली कि विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। सो माँ कहती है, समझने का प्रयास करो बेटा। कितना सरल करें, सरल तो हो ही रहा है, किंतु अपन भी समझने का मन बनाए। निश्चित मानना, इसलिए देशना लब्द से हमने जो बताया था आपको, पांच लब्धियों में देशना लब्धी है। हमारे भीतर उस तत्व को, विषय को समझने की योग्यता पैदा हो जाना, ये भी बहुत पुण्य का उदय है। सुनते तो सब है महाराज, किंतु समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो इसमें भी अपने क्षयोषण की कमी या पुण्य की कमी होती है। तो यहाँ पर वही कहती है, समझने का प्रयास करो बेटा। मन एकाग्र अगर हमारा है तो बहुत जल्दी विषय समझ में आता है, और मन चंचल है तो एक मिनट में इधर सुना और फिर उधर चले गए, तो वो विषय समझ में नहीं आ पाता। तो सतयुग हो या कलयुग, अब सुनो, सतयुग हो या कलयुग बाहरी नहीं, भीतरी घटना है वह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपाद कर्म सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। आपका लक्ष्य क्या है? देखो, अब यहाँ पर सतयुग कलयुग की दूसरी परिभाषा बता रहे हैं। सत यानी निज आत्म तत्व की खोज में लगी जो दृष्टि है, वही सतयुग है बेटा। और आपाद कंठ विषयों में डूबी, पांच इंद्रिय होते हैं, पांच इंद्रिय जो विषय भोग हैं, उनमें जो दृष्टि डूब गई तो स्वयं कलयुग है बेटा। सतयुग कलयुग हमारी दृष्टि पर आधारित है। हमने अपने जीवन का लक्ष्य किसे बनाया? निज स्वरूप की प्राप्ति लक्ष्य बनाया है, आत्म कल्याण लक्ष्य बनाया है, तो हमारे भीतर सतयुग स्वयं चमक रहा है। और विषय कषायों में ही डूबा हुआ जीवन है तो वह कलयुग है बेटा। वह सत को असत मानने वाली दृष्टि, सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। जो सुख का साधन है उसको दुख का साधन मान रहे हैं, और जो दुख का साधन है उसको सुख का साधन मान रहे हैं। जैसे अपन ने परिग्रह दुख का साधन है कि सुख का साधन है, दोनों ही है, दुख का भी है और सुख का नहीं है ऐसा। अरे हैं, हाँ छोड़ दो सब, नहीं सुनो, यही हमारा कहना है बार बार आपके लिए, छोड़ना नहीं छोड़ना ये अलग बात है, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के मोहनी कर्म बताए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के जब अभाव होता है तो वस्तु तत्व का श्रद्धान मजबूत होता है, तो चारित्र मोहनी का अभाव जब होता है तो उसके जीवन में चारित्र को अंगीकार करने का सौभाग्य मिलता है। तो कई बार क्या होता है, वस्तु तत्व समझ में तो आता है लेकिन आचरण में नहीं उतर पाता, इसलिए आचार्य ने कहा या चरित्र मोह बस लेस न संयम जय सुरनाथ जजे है। चारित्र मोहनी के तीव्र हृदय में वो समस्त सब रहा है लेकिन उसको वो स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन फिर क्या करे, पढ़ना छोड़ दे क्या, नहीं, अभ्यास तो निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे ही हमारे कर्म का मंदोदय होगा तो तुरंत हमारे चारित्र के परिणाम बन जाएंगे। जैसे सुबह भैया जी से चर्चा हुई कि प्रतिगमन करना कि नहीं करना, पहले भी कुछ बच्चे ने हमसे प्रश्न पूछा था कि महाराज प्रतिगमन वगैरह हम क्यों करें, बार बार वो ही रोज पता अपने को चोरी करना है, रोज पता हिंसा करना है, फिर शाम को आलोचना पाठ करें, आलोचना पाठ में आता एक देवे इंदिये तेंदिये वा मन सहित सहित जे जीवा नहीं करुणाधारी मेरे घात सारी। निर्दय होकर के उन जीवों का मैंने घात किया, फिर आलोचना कर रहा है, फिर कल सुबह वही काम कर रहे हैं, तो क्या करना, क्यों बार बार ऐसा भगवान के सामने झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना, भावना तो हमारी ये ही क्या इस पाप से बचे, लेकिन नहीं बच पाते तो कम से कम अपने परिणामों से उसकी आलोचना कही, भगवान मेरे द्वारा ये कार्य मिथ्या हो गया। बार बार ऐसी परिणति होते 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 जब कोई पुण्य का योग आएगा तो आपको पाप छोड़ने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये पाप दुख का कारण है, ये पाप निंदनीय है और वो फटाफट आपसे छूट जाएगा। और जिसके संस्कार ही नहीं रहेंगे, जो पाप को पाप ही नहीं मानेगा तो कभी भी छोड़ने का विचार आएगा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है तात्कालिक हमें कोई परिणाम नहीं मिलता लेकिन एक वक्त पर ही वो परिणाम मिलता है। जैसे हमने फिर उदाहरण दिया था, टाइटेशन करते हैं केमिस्ट्री में, जब टाइटेशन करते हैं तो एक एक बूंद वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है H2SO, वो नीचे जो फ्रॉस्ट उसमें जो मिलाते हैं, एक एक बूंद को परिवर्तन देखने में आता नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा होता है जब वो की 10-20 मिलीलीटर से 15 मिलीलीटर जो चला गया, एक क्षण में वो सफेद पानी पिंक कलर का हो जाता है एक क्षण में। अब ये इतने जो पहली बूंद गिरी उसने कुछ परिवर्तन लाया कि नहीं लाया उस पानी में, तभी जाके वो 50वीं बूंद में रंग बदला। हम आज हमारा पुरुषार्थ भले कार्यकारी नहीं हो रहा लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी असर नहीं हुआ। आज का जो हमारे पाप के प्रति ग्लानी का संस्कार है कि आगे जाके ऐसा पड़ेगा कि वो पाप छोड़ते समय हमें बिल्कुल भी कष्ट होने वाला। एक व्यक्ति वो आप कहते रहो कि ये छोड़ दो, तमाकू छोड़ दो, पाप छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पाता। और एक व्यक्ति को ऐसा आपने कहा, थोड़ा सा झटका लगा, चलो आज से त्याग, इसका अर्थ क्या हो गया, इसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं, उसके त्याग के पहले से संस्कार या बार बार भावना भाई होगी लेकिन किसी तीव्र हृदय से वो उसको नहीं छोड़ पाता, कि वो संस्कार उसके आज काम आते हैं कि एक बार गुरु के वचन सुना और वो चीज उसको छोड़ देता। मुनि बनने के लिए वर्षों से कोई संस्कार या कई लोग ऐसे हैं जो कि फटाफट छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब लगता तो नहीं था, जैसे यही बता देंगे तुम्हारे समझ सुनत का नाम है, सूट से उनकी दिखता है ना, सलवार सूट से समझ के मत तो सलवार छूटने के अब वो पता नहीं कैसा क्या योग बना, गुरुजी ने जो कहा उनका भाव। अब उनने तो उन्हें कभी आर्यता संघ में भी नहीं रहे बताते, कभी जिंदगी में कोई आर्यता संघ में रही नहीं, कभी कुछ देखा नहीं, साड़ी सफेद पहनी नहीं, रंगीन पहने पत्ते वाली। हाँ अब बता, अब योग हाँ कहने करते देखो कब निमित्त बन गया। अब ये कैसे हुआ तो पूर्व भव का या कोई पुण्य ऐसा भावना थी कि नहीं तो कई वर्षों वर्षों से इतने कोष्ठ में रहने के बाद वो नहीं हो पाते। फिर कोई पूर्व का संस्कार का ऐसा निमित्त मिल गया और तात्कालिक वो परिणति ऐसी बन गई कि इधर सफेद साड़ी पहन करके कई लोगों ने 30-30 साल निकाल दिए लेकिन आज भी दीक्षा का योग। और कोई एकदम आया और संग में भी कई बार ऐसा हुआ, एक पाए सागर नेमी सागर महाराज जी है अभी दक्षिण में है, वो छोड़ने आए थे ब्रह्मचारी जी को कि उनकी दीक्षा होनी, तो दक्षिण से छोड़ने आए थे। तब जिनको छोड़ने आए थे वो तो पड़ गए बीमार, तब इनकी दीक्षा हो गई। अब कैसा क्या ये पुण्य का माचन महाराज ने कहा वो नहीं, चलो तुम आ जाओ, बोले हाँ महाराज तो आ जाओ बैठ जाओ लग गई लाने। ऐसे क्षमा सागर महाराज जी का भी सुनते हैं, वो गए थे दीक्षा देखने, आप पता चल रही तो आते सुने का तुमको नहीं लेना, बोले लेना है तो आ जाओ कर लो कि उसमें जमन की दीक्षा हो गई। कई तो हमारा ये कहना है आपसे, आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि कोई भी संस्कार व्यर्थ नहीं रहते। और हम भी समझते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं, बार बार आप चिंतन मनन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो वो संस्कार आत्मा पर बैठ तो रहे हैं। रस्त्री आवत जात ही सिल पर हो, तो इसीलिए प्रवचन सुनते रहो, स्वाध्याय करते रहो, प्रतिक्रमण करते रहो, हल निकले नहीं निकला ये आपको भले लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमारा तो ये मानना है किस समय वो संस्कार काम आ जाएंगे कह नहीं सकते। अरे उस समय महाराज क्या यहाँ तक लिखा है आगम ग्रंथों में नरकों में वो संस्कार काम आ जाते हैं। और ये देखो महाराज जी उस समय प्रवचन में कह रहे थे, सुदासा महाराज जी सुना था, बोले जब नरकों में वेदना सम्यक होता है, जब वहाँ खूब फुटाई फुटाई होती है, बहुत तकलीफ होती है, उस समय याद आ जाता है, अरे बताओ गुरु महाराज उस समय प्रवचन में बैठे हमें समझा रहे थे, देखो पांच पांच छोड़ दो, उस समय समझ में नहीं आया, आज जब फुटाई फुटाई होने लगी तो समझ में आया, और अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन भी नहीं सुन रहे आगे पढ़ा। हाँ सप्तम नरक तक में सम्यक दर्शन होता है, इसीलिए बता सुनो पढ़ने वाले, नारकों में अवधि ज्ञान नरकी नारकी जीवों में सुअवधि ज्ञान होता कि नहीं होता, नारकों में सुअवधि ज्ञान होता कि नहीं होता, तुम भी ऐसे कह लोगे है, इसीलिए तो भैया यदि नार की मिथ्या दृष्टि है तो कुअवधि और सम्यक दृष्टि है तो सुअवधि। लेकिन लोग क्या सुनते हैं नार की को कुअवधि ज्ञान नहीं, नार की दो प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि नार की और सम्यक दृष्टि नार की। सप्तम नरक में भी सम्यक के साथ रहने वाले नार की जीव हैं, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि नार की जीव सप्तम सप्तम पृथ्वी में भी कितने हैं असंख्यात, एक दो नहीं असंख्यात नारकी ऐसे सप्तम नरक में जिनको की सम्यक दर्शन है, और उनका जो अवधि ज्ञान है वो सुअवधि ज्ञान माना जाएगा। तो सभी नारकियों को अवधि ज्ञान होता है ऐसा नहीं, नारकियों मिथ्या दृष्टि है उनको को अवधि, और यदि सम्यक दृष्टि है तो सुअवधि ज्ञान होता है। इसीलिए कोई भी संस्कार हमारा खाली नहीं जाता। अब देखो एक चिंतन हमारा परसों चला था, आपने जैसे पूछा था कि स्वभाव परिवर्तन नहीं होता, एक वो कहावत का जो दो लाइन सुनाई थी उन्होंने, क्या स्वभाव नियम न छोड़ जेके जैन जोन स्वभाव जाए नहीं जी से नीम, हाँ नीम खा वाले गुड़ घी से नीम भले गुड़ घी से वाले कड़वापन नहीं छोड़ते। अब इसमें आगम यदि ऐसी बात पर हम मानते हैं तो महाराज जब हमारे जीवन में कुछ स्वभाव परिवर्तन होने वाला नहीं है तो हम काय को इतने क्लास सुनो भैया, ये तो निश्चय से हमने देखा, हम भी अनुभव कर रहे हैं कि जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो शैली है, जिसका जो उठने बैठने का तरीका है या बोल चाल का तरीका है, वो बहुत मुश्किल होता है कि वो सुधर पाए स्वभाव। ये तो उस दिन हमें लगा कि भले हमने के वास्तव में स्वभाव को बदलना बहुत कठिन होता है, और वो नीम है गुड़ घी से खा तो भी कड़वी लगेगी। ऐसी कुछ लोगों का स्वभाव है, चाहे वो मंदिर में बैठ जाए, चाहे महाराज के पास बैठ जाए, चाहे भगवान की वेदी पे बैठ जाए, लेकिन वो स्वभाव में जो के तो रहता है। फिर क्या कभी परिवर्तित नहीं होगा? यदि नहीं होगा तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? फिर ये प्रश्न उठ जाएगा। इसका उत्तर समय सार में आकर पंडित स्वामी ने लिखा है कि वह शंख जो कि सफेद भाव को स्वयं छोड़ दे तो कालेपन को प्राप्त हो जाता है, अथवा काला शंख अपने कृष्ण भाव को छोड़े तो श्वेत पने को प्राप्त हो जाता है। हमारे तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं होगा, किंतु यदि वो चाहे कि मुझे अपना स्वभाव बदलना है, सुन रहे नहीं सुन रहे? आप यदि सोचे कि हमारा स्वभाव को हमें बदलना है, तो हम आपके लिए निमित्त बन सकते हैं, लेकिन स्वयं को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप प्रवचन सुनने मात्र आपका स्वभाव बदल जाए, इम्पॉसिबल। फिर जब आपने गुरु की बात सुनी, उसके बाद मन में एक संकल्प, यार मुझे अपनी बैड हैबिट, बुरी आदत या मुझे स्वभाव को बदलना है, ये मेरा स्वभाव गड़बड़ है, गुस्सा करते हुए मेरा स्वभाव गड़बड़ है, या मैं मायाचारी करता हूँ, लोभ करता हूँ, या और भी जितने विकारी भाव है ये मेरे लिए गलत है, अब मुझे अपने स्वभाव को बदलना है। यदि आपने अपने मन में मन बना लिया मुझे इस हैबिट को बदलना है, तो आप ही बदल सकते हैं, कोई निमित्त उसमें कार्यकारी नहीं होगा। पुण्य स्वामी ने स्पष्ट पुण्य पाप अधिकार संभवता है, उस निर्द्रा अधिकार में गाथाएं आई हैं कि यदि वो शंख अपना स्वभाव बदलना ना चाहे तो कितना भी उसको निमित्त मिल जाए, कभी वो शंख बदलने वाला, तब हमें लगा कि स्वभाव बदल तो सकता है, किंतु आप पहले ये अपना निर्णय करें क्या मुझे बदलना है। आप अपने आप को बदलने नहीं चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके स्वभाव को बदल, आपने सोच लिया कि मुझे कुछ परिवर्तन करना है, तो संभव है कि ये देव सात गुरु का सानिध्य या कोई भी माता पिता का निमित्त हमारे लिए कार्यकारी हो जावे। तो कली विषयों में डूबी आपाद कंठ, सब कोई असत मानने वाली है जो दृष्टि है, स्वयं कलयुग है बेटा, कली काल समान होता है, अदय मिलय रहा है, अति क्रूर होता है। कली काल कैसा होता है? क्रूर होता है, अदय का स्थान है। कली का सब कैसा है? कली का लता समान है, अक्षय सदय रहा है। एक की दृष्टि में हमेशा भ्रांति भ्रांति होती है, तो एक की दृष्टि में शांति का मानस लहराता है। एक की दृष्टि सबको तोड़ने की ओर जा रही है, एक की दृष्टि सबको जोड़ने की ओर जा रही है। एक की सृष्टि चंचल है, तो एक की सृष्टि अचल स्थायी है। कली काल तो मृतक शव के समान है जिसमें आग लगाना है, और सतयुग तो शिव के समान है, उस सतयुग में राग जगाना है, अर्थात सतयुग को प्राप्त करना है। अब आगे का प्रश्न चारण करते हैं। ना समझ थी, पढ़ लिया था, यहाँ पढ़ तो लिया था, ना समझ तो बना मछली कहती है, अभी तक मैं ना समझती माँ, लेकिन और उलझी थी, अब सुलझ गई, अब मुझे पीने के लिए जल की आवश्यकता नहीं, ना ही जीने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, मेरा जीवन उस चेतन आत्म तत्व से किसी तरह जुड़ जाए, बस इस जल में जन्म लिया मैंने, किंतु मैं जलचर जीवों से ही पीड़ा को प्राप्त करती रही, इस जड़ में कहाँ शीतलता है, जो मैंने आपके चरणों में आकर के चंद पलों में जो मुझे शीतलता का अनुभव हुआ, जो शांति का अनुभव हुआ, उन जड़ पदार्थों में कहीं पर भी सुख, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि जड़ पदार्थ में भले सुख खोजता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब प्रभु के दरबार में आ जाता है, प्रभु देव सांस गुरु अगर मिल जाते हैं, तो जो आनंद उसको होता है वो जड़ पदार्थों में, वह उसको वो आनंद नहीं आता। जड़ में शीतलता कहाँ, शीतलता का माने सुख शांति। जड़ पदार्थों में आकुलता ही आकुलता है, लेकिन जब मैंने आपकी शरण को प्राप्त किया तो मुझे जो शीतलता मिली, चंदनिया चल का चंदन और चीतो हारणी, चांद की चमकती चांदनी भी चित्तो चल के कहीं चली गई। जिन पदार्थों को मैं सुख शांति का कारण मानता था, जड़ पदार्थों को, वह भी मेरे भीतर से वह चली गई। और ये मेरी स्पर्शता पर आज हर्षा की वर्षा की है तेरी शीतलता ने। माँ शीतलता हो तुम साक्षात से आने आने कल्याण को करने वाली हो। तेरी गोद में ही इसे बोध मिलेगा माँ, तेरी गोद में ही इसे शोध चलेगा माँ, अगणित गुणों के ओग का। अब वो कहता है, कहती है वो मछली, हे माँ माटी, तेरी गोद में अब मुझे आगे सम्यक ज्ञान मिलेगा और तेरी ही गोद में शोध यानी कुछ नया ज्ञान खोज मुझे मिलेगी। अगणित गुणों के समूह को अगर मैं खोजना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे चरण को छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं चाहती। और सुनो माँ, व्याधि से इतनी भीती नहीं इसे जितनी आदि से है, पर आदि से भी इतनी भीती नहीं इससे जितनी उपाधि से है। इसे उपाधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं माँ। इसे संधि समाधि मिले दस, अवधि समाधि नहीं। उपाधि यानी उपकरण उपकारक है ना, और उपाधि यानी परिग्रह अपकारक है ना। व्याधि माने होता है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट से मुझे इतना भय नहीं जितनी आदि माने मानसिक कष्ट। शारीरिक कष्ट कोई कष्ट नहीं होता, होता भी है तो वो इतना एक, लेकिन मानसिक कष्ट इतना कष्ट होता है कि उसको अपन व्यक्त नहीं कर सकते। तो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास शारीरिक कष्ट भले कम हो लेकिन मानसिक कष्ट बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर जितने मुझे शारीरिक कष्ट से भय नहीं कितनी आदि से है। मानसिक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प क्रोध मानवा जितने भी विकार है ये सब हमारी आधिया है। आदि व्याधि अग मद मिटे तुम पद में, आदिनाथ भगवान को सिद्ध करते हुए आचार्य महाराज ने लिखा है। आदि माने भीतर के संकल्प विकल्प, ये बहुत खतरनाक है। तो ये जो आदि है ये व्याधि से इतनी तकलीफ नहीं है, मुझे डर नहीं है जितना कि आदि से, और आदि से भी इतनी भीति नहीं है जितनी उपाधि से। उपाधि माने मान सम्मान, उपाधि के उपाधि। इससे बड़े बड़े संत महापुरुष भी नहीं बच पाते, इसीलिए अष्ट पावर आदि ने आचार्य महाराज के खाई छाती को क्या कहते हैं, खाई छाती पूजा लाभ की चाह में जो लग गया सब कुछ उसका नष्ट होता चला जाता है। उपाधि के कहते हैं कितनी उपाधि, कई जगह आप देखना एक उपाधि दो उपाधि तीन उपाधि और उपाधि की उपाधि, और इसके लिए ही मरते हैं वो। एक जगह हम कोई विधान होने वाला था और विधान के लिए बोलियां चल रही थी, सौगन इंद्र की नहीं चल रही थी, भरत चक्रवर्ती की समोषण विधान था, चक्रवर्ती की बोली चल रही थी। एक चिट्ठी हमारे पास आई, उसमें लिखा था महाराज यदि आप चक्रवर्ती की उपाधि हमें दिलवा दो तो हम 5 लाख की बोली ले सकते हैं। जब हमारे पास मंच में आए महाराज ने दिखाया तो हमने कहा भैया देखो पहली बात तो हम उपाधि देते नहीं, अब यदि समाज का काम है समाज को देना लेना तो विचार कर ले, लेकिन यद्यपि वो अच्छे पोस्ट हमारी सजाई आदि खूब पाली उनके मन में लगे मेरे नाम के आगे चक्रवर्ती रखना चाहिए क्योंकि कुम्हार के आगे भी चक्रवर्ती लगता है कोई चक्र। अब लेकिन उनका तब हमें लगा कि व्यक्ति को उपाधि से कितना प्रेम है, वो कहने लगे चक्रवर्ती हम अपने परिवार के सामने लिखना, समाज अगर हमें प्रमाणित करे कि हम चक्रवर्ती बने थे तो हम उसके लिए 5 लाख की बोली लेने को तैयार हैं। आज व्यक्ति नाम की चाह के लिए सब कुछ करने को तैयार, उपाधि मिलना चाहिए। वास्तव में भी सामने एक व्यक्ति भूखा तड़फ रहा हो तो व्यक्ति शायद उसको 100 रुपए देने में भी सोचेगा, और यदि कहीं पर नाम लिखना हो तो 10,000 भी वो दे देगा हंसते हंसते। देख लो इधर सोनागिर वगैरह में हर सीढ़ी पे पत्थर लगा है, बढ़िया सबके नाम लिखे, तो कहां वो चले गए? किसने लिखा? एक नाम के अगर दो व्यक्ति हो गए तो लिखना पड़ेगा ये सहापुर वाले की सागर वाले। मान लीजिए सहापुर वाले दो नाम के हो गए, अब उनके साथ उनका आड़ना और कुछ लंगा पड़ेगा, कैसे पहचानोगे? वही नाम परिवर्तित होते हैं, फिर भी नाम की चाहने उपाधि किया, इसलिए उसे उपाधि से भी भय है। एक बार आचार्य महाराज के साथ सागर में बता रहे चारू चक्रवर्ती उपाधि देने का लोगों ने विचार बनाया और पंडितों ने सब निर्णय किया, तो आज से स्पष्ट कहा कि मेरे गुरु द्वारा मुझे जो पद दिया गया है इसके सिवा और कोई मुझे दूसरे पद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए समाज मुझे कोई उपाधि न दे। मेरे गुरु ने मुझे बहुत बड़ी उपाधि दे दी जो साधु पद दे दिया, अब मुझे किसी आज लोग मुनि बनने के बाद भी डॉक्टर की उपाधि चाहिए, PhD कर रहे डॉक्टर डीलिट एम, मतलब ये समझ रहे कि डॉक्टर ज्यादा बड़ी उपाधि है कि मुनि ज्यादा बड़ी उपाधि है? बोलो, हम मुनि बनने के बाद डॉक्टर की उपाधि के पीछे पड़े हैं। भगवान ही मालिक है, पंचम काल का ये अच्छा है कि मुनि बनने के बाद डॉक्टर और डीलिट उपाधि के लिए कुछ साधु तरस रहे हैं और इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बना करके उनको वहाँ पे डॉक्टर की उपाधि दी जा रही है। ऐसा अवधि समाधि, अच्छा उपाधि की नहीं, उपाधि की आवश्यकता उपाधि की नहीं माँ, समधि समाधि मिले बस, अवधि समाधि नहीं। और मुझे समता पढ़ से मेरी बने उपाधि यानी उपकरण है, उपकारक और उपाधि यानी परिग्रह अपकारक है। उपकरण की तो मुझे आवश्यकता है किंतु परिग्रह की आवश्यकता उपकरण, जैसे मान लीजिए चश्मा लगाना बुरा नहीं है, चश्मा तो होगा उपकरण, लेकिन चश्मा तो अलग है, उसके गॉगल में क्या कर दूसरा फ्रेम, फ्रेम के चक्कर में पड़े रहो, तो ये परिग्रह है। आवश्यकता है, अपन ने ले लिया उसको उपयोग कर लिया, लेकिन फ्रेम कितने प्रकार के, चश्मा तो एक ही है लेकिन 10 फोटो देखोगे तो आप में 10 प्रकार के फ्रेम हैं। किसके फ्रावक नहीं देखना, कोई बड़ी बड़ी पत्रिकाएं आती है उसमें महाराज चश्मा ऐसा क्लीन, और चश्मे के ऊपर जो फ्रेम लगा रहता है तो वो परिग्रह। आचार्य कहते हैं कि उपयोग की वस्तु तो उपकरण में है, इसमें जो फनाफन होता है वो परिग्रह में आ जाएगा। धोती दुपट्टा के लिए उसमें और जो ऐसा हो गया ये सारे के सारे, तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं उपाधि की आवश्यकता है क्योंकि बिना भोजन के मेरा काम नहीं चलेगा, ये उपाधि उपकरण मान लो। इसी में जो राग देश की परिणति उपाधि हो जाएगी, तो परिग्रह तो अपकारक है और उपकरण तो उपकारक है। और मछली कहती है इसलिए मुझे सर लेखना दो माँ, बोधी के बीच को लेखना दो माँ, मुझे देखने दो समाधि को बस देख सकूं। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है, अब मछली समझ रही है कि मैं इधर ऊपर तो आ गई हूँ किंतु अब मेरा जीवन बचने वाला। मछली जल की रानी है, जीवन उसका, हाथ लगाओ डर जाती है और बाहर निकालो। सबको आपकी कविता है, हिंदुस्तान में ये भी ऐसा बच्चा नहीं होगा महिला या फिर जिसको ये कविता ना आती हो, मछली जल की रानी है पहली से पढ़ाई जाती है। अब उस मछली को पता है जैसे मैं बाहर आऊंगी तो मेरा जीवन समाप्त हो, समझ रही है कि पानी के बिना मेरा अस्तित्व तो नहीं रह पाएगा। अब वो कहती है माटी से, हे माँ मुझे सन लिखना दे दो, मुझे कुछ ऐसा संबोधन बोधी के बोध सम्यक ज्ञान दो, मुझे कोई उपदेश दो जिससे मैं भी समता परिणति को धारण करूं और इस देह का विसर्जन कर सकूं, समाधि को देख सकूं। इस पर माटी मुस्कान लेती हुई कहती है कि बेटा सल्लेखना यानी काय और कसाय को कष्ट करना होता है बेटा, काया को कष्ट करने से कसाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए, और काया को मिटाना नहीं, मिट्टी काया में मिलती माया में लाल मुखी और मुझद मुखी नहीं होना ही सही सल्लेखना है। अन्य का आत्म का धन लुटता है बेटा। कल लिखना किसे कहते हैं? काय और कसाय दोनों को कम करना होता है, सुखाना पड़ता है। काय फिर भी सूख जाए किंतु कसाय सूखती, तो काय और कसाय, काय सुख गई कसाय कम नहीं हुई तो सही संलेखना नहीं है। और काया को क्रश करने से कसाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए। जैसे शरीर क्रश होता है तो कसाय भी मंद होनी चाहिए और होती है। यदि ऐसा नहीं होता, और सुनो, काया को मिटाना नहीं, क्या कहा, काया तो अपने आप मिट, काया को मिटाना नहीं किंतु मिटती काया में और मिलती माया में ये शरीर छूट जाएगा, फिर क्या मिलेगी, और ज्यादा माया मिलेगी और स्वर्गीय सुख वैभव मिलेंगे। तो मिटती काया में दुखी भी मत होना, म्लान मुखी माने जैसे दो चार उपास के बाद चेहरा मुरझाता माना, तो म्लान मुखी नहीं होना और ना ही मुदित मुखी होना, अरे मुझे इतना वैभव मिल रहा है, नहीं। दर्पण रोया तब हंसा, ऐसा यह संन्यास। दर्पण ना रोता है ना हंसता है, जैसा व्यक्ति उसके सामने आता है वैसा वो दिखाता है, ऐसा ही संन्यास है। महाराज आपको कैसा लगा हमारा शाहपुर, आपको कैसा लगा? हमें तो अच्छा लगा। हाँ तो आप लोग रहो, हम तो जा रहे। जिसको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो शाहपुर में रुकेगा। अब अच्छा या बुरा है, अच्छा लग भी जाए तो क्या प्रयोजन? धर्मशाला में कितने दिन, होटल में आप कहीं बाहर जाओ या बस स्टैंड पे, बहुत अच्छा आपका मैंने रेलवे स्टेशन बना हो और बहुत अच्छे वाईफाई भी लगा ना रेलवे में, वाईफाई स्टेशन में बताते कोई वाईफाई लगा हो, बढ़िया बैठने की कुर्सी है और खूब अच्छा, तो व्यक्ति कब तक स्टेशन बैठता है? ट्रेन आ गई, नहीं बहुत अच्छा स्टेशन में तो मजा आ रहा है तो बैठ रहे। नहीं भैया, मूवी अभी चीटी आएगा डंडा लेकर के, आपको जब भी बैठने की सुविधा है जब तक की ट्रेन नहीं आ गई, और ट्रेन आ गई तो उठो ट्रेन में बैठो जाओ। नहीं, इस ट्रेन के डब्बे से भी ज्यादा आनंद स्टेशन में है, लेकिन रुक सकते क्या? नहीं। इसीलिए ज्यादा अच्छा लगना नहीं, क्योंकि साधु के लिए तो आज नहीं इच्छा। हाँ, कैसा लगा तो कोई पूछे महाराज आपका आहार कैसा हुआ, हम पूछे आपने कैसा कराया, आपने अच्छा कराया तो अच्छा कहूंगा, और नहीं कराया मैं और आप ही बताओ कैसा आहार कराया, बोले हमने तो अच्छा कराया, तो हमने भी अच्छा किया। हमें क्यों बताओ तो ज्यादा ओम शांति के करके निपटा दो, क्योंकि उस समय सत्य बोल ही नहीं सकते। आहार के बाद ही एक सुधा साहब जी कहते साधु को एक समय तो झूठ बोलना ही पड़ता है, तो किस समय? आहार के बाद। महाराज कैसा आहार हुआ? ठीक हुआ। नहीं भी हुआ तो बोलना क्या पड़ेगा? अब बुरा बोल तो हम तो कहते थे ओम शांति, इतना भी झूठ क्यों बोलो? फिर कोई ज्यादा पीछे पड़ जाता है, महाराज आप बताओ आपका आहार कैसा हुआ, हमें बताओ आपने आहार कैसा कराया, और धीरे से बोलते महाराज हमने अच्छा, तो हमने तो अच्छा कराया, तो हमारा भी अच्छा हुआ, जैसा आपने कराया वैसा हुआ, खत्म का ये स्थिति है। तो व्यक्ति सुनना चाहता है लेकिन आता है मोक्ष मार्ग तो वो है, मिलती माया में प्रसन्न भी नहीं होना और मिटती काया में दुखी भी नहीं होना। यदि जो छूट रहा है तो ज्यादा ग्लानी मत करो, दुखी मत हो, और जो मिल रहा है उसमें ज्यादा प्रसन्न मत हो। सुख में मग्न हो कभी ना फूले, और दुख में कभी ना, थोड़ा सा सुख मिल जाए तो फूल करके पानी पूरी जैसे फूल जाओ, और थोड़ा सा दुख मिल जाए तो किसमिश जैसे सूख जाओ, आते से छुआरा जैसे हो गए, छुआरा होता है ना खारा, पिंड खजूर सूख करके छुआरा हो गए। तो ये हम लोगों की एक सबसे बड़ी कमी है, संसारी प्राणी की हम भी इसमें है। अभ्यास ये होना चाहिए कि सुख में ज्यादा फूले नहीं और दुख में एकदम पिचको नहीं। और ये कई बार हमने देखा बहुत ऐसी स्थिति बनती है, कई लोग ऐसे होते हैं एकदम प्रसन्न हो जाएंगे और थोड़े से विपरीत आ गई एकदम डाउन हो जाएंगे, या तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल मित्रता बनेगी या बिल्कुल शत्रु बन जाएंगे। मित्रता करेंगे तो कहो एक दिन भी बात करना ना छोड़ो, लड़ाई हो जाए तो जिंदगी भर बात ना करें। ऐसा लड़के में ज्यादा होगा देखो कई इन लगे ऐसी दोस्ती होती, कई हमने देखा कई मैंने या ऐसे वो सहेली बनेंगे तो बिल्कुल ऐसे कट्टर की इसके बिना दूसरे कहीं नहीं जाएंगे, और जब लड़ाई हो जाए तो जिंदगी भर फिर तो मित्रता कराना भगवान ही आगे नहीं करा सकता हूँ। खुश खुश हो जाएंगे तो इतनी ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं बिल्कुल उत्साह, और डाउन हो गए तो एकदम अपन ये समता परिणति का विपरीत करण मन है। इसलिए आचार्य कहते हैं दुख में मग्न हो कभी ना फूले, सुख में कभी सुख में मग्न हो कभी ना फूले, दुख में कभी ना। ये जो समता परिणति का विकास है ये भी संलेखना के एक अंग है, जो साधक साधना में लीन है एकदम। देखना आप आचार्य महाराज वगैरह कभी एकदम ऐसे उत्साहित नहीं होंगे, और बड़े से बड़े संकट के क्षणों में वो एकदम वो भी नहीं होते। अब क्या होगा वो इंसान से सब होता, क्यों घबरा रहे हैं आचार्य महाराज बाबू देखो ना कभी अपन कोई घबरा नहीं जा अब महाराज ऐसा क्या शांति होगा सब होता है। इतनी क्षमता उनके पास आ गई, ये ही बहुत आदर्श है कि समझी माने या मिलान मुखी, और जो थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ो काया को मिटाना नहीं, मिट्टी माया में और मिट्टी काया में और मिट्टी माया में मिलान मुखी और मुदिल मुखी नहीं होना सही संलेखना है। जो मिल रहा है उसमें ज्यादा प्रसन्न मत हो, जो छूट रहा है उसमें ज्यादा दुखी। छोड़ना तो है सरसों के सबसे सभी छोड़ा नहीं है, अब ठीक है। सम्यक दृष्टि जो होता है वो देव साध गुरु का समागम छूटता है तो दुखी तो होता है, पर मिथ्या दृष्टि जो होता है मजा मना बोले चलो भैया परसों तो फिर, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। और जिसको लगे कि हे भगवान घर काराग्रह कनिका वेणी परिजन है रखवाले, यदि ये पंक्ति सपने में आती रहे कि भैया काराग्रह से आए थे 10 दिन के लिए अब पुनः काराग्रह में, ये सम्य यही पैदा हो जाएगा। सम्य दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, जिस दिन आपको घर दृष्टि काराग्रह की समान लगने लगे, आप लोगों को भी दोनों तरफ से है, आप लोगों का भी ऐसा मिल जाए आर्यता संकट शामिल मिल जाए और वहां जब लौट के आना पड़े आंखों में आंसू आ जाए तो समझे सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो घर से वहां जाते समय रोना है समझे मिथ्यात्व का लक्षण है। कहां एक बात इसमें दिखाते हैं संतों का जब आगमन हो, संतों का जब गमन हो जब लगता जग निस्तार, संतों के आगमन से रहे न हर्ष का पार, और संतों का जब गमन हो लगता जगत निस्तार। जब संतों का आगमन होता तो सम्य दृष्टि उल्लसित हो जाता आनंदित होता है, और जब वो चले जाते हैं तो उनका लिए वह निस्तार सारा का सारा जगत सारहीन हो गया, लुट गया। क्या लुट गया महाराज को छोड़ी ना ले गए, खाली आए तो खाली गए, क्या लुट गया। सम्य दृष्टि कहता मेरा तो सब कुछ लुट गया, क्या लुट गया, वो दूसरे घर में माता पागल हो गए क्या, काय को पागल हो रहे। वो कहता क्या बताएं ये तो भीतर की बात है कि हमारी आस्था और श्रद्धा की डोर जो बंधी थी, सामने वाला तो आपको पागल समझेगा है, और जो जुड़ा हुआ है सम्यक दृष्टि है वो कहता कि ओ हो मेरा तो सब कुछ लुट गया, क्योंकि इतना पुण्य मेरे आया था कि मुझे संयम था, दिन भर बैठ के स्वाध्याय कर रहा था, दिन भर पाठ पाठ से बचा था, संयम जीवन था, कोई गर्भवती की चिंता नहीं थी, किंतु आप पुनः जा करके वहीं पर फंसना है। यदि ये भाव तुम्हारे भीतर आ रहे हैं तो समझना सम्यक दृष्टि तुम हो, और लग रहा है कि कब एक दिन और व्यतीत हो जाए, और चरों सुबह उठते ही से 5 बजे हो गया। यदि ये यहाँ तुम्हें बंधन लग रहा है और घर गृहस्थी का जीवन सुख का लग रहा है, समझना ये मिथ्यात का लक्षण है। तो घर गृहस्थी तुम्हें काराग्रह लग रही है और ये मोक्ष मार्ग अच्छा लग रहा है, समझ सम्यक दृष्टि का लक्षण है व्यवहार की अपेक्षा, और ऐसा होता ही है। लेकिन यहाँ पर फिर भी म्लान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अप्रशस्त को प्रशस्त राग में बदला जाता है। एक परिवार का राग और एक गुरु का राग, दोनों में अंतर है कि नहीं? राग तो दोनों है, क्योंकि परिवार का राग संसार को बढ़ाने वाला है, तो देव साथ गुरु का राग संसार को घटाने वाला है। एक दिन की लालिमा है तो एक शाम की लालिमा है। तो दिन की लालिमा वो है जब हमें देव साथ गुरु के प्रति राग हो जाता है, तो आचार्य लगा उष्ण नीर भी आग को क्या ना बुझाता। आप ठंडा पानी तो आग को बुझाते ही बुझाता है, क्योंकि गर्म पानी आग को नहीं बुझाता, निश्चित बुझाता है। तो यहाँ पर यही बात बता दू, अंतिम चल रहा है प्रश्न, तो सर लिखना किसे कहते बता दिया, वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता हो या ना हो, दो प्रकार का वात हो। एक वजन, देखो पहले में क्या लिखा, वजन वाला एटमॉस्फेयर वायु अनुकूल हो अथवा ना हो, ठंडी हवा चले चाहे गर्म हवा चले, अथवा आसपास का वातावरण अपने अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, क्या पूछना। दूसरे में लिखा है वातानुकूलता होना, एक दूसरे की बात हमारे अनुकूल हो या ना हो, हर व्यक्ति अपने अनुकूल बोले ऐसा हो सकता क्या? नाना जीवा नाना कम्मा नाना अभियान हवे लग्जी, संसार में इतने लोग हैं और सबके अपने अपने कर्म का क्षयोत्सम है, हर व्यक्ति आपके अनुकूल हो ऐसा कभी भी, आप अच्छा बोले लेकिन फिर भी वो आपसे बुरा बोलेगा, दिस इज पॉसिबल। ऐसा भी संभव कि आप किसी से बहुत मधुर बोलो फिर भी वो जब आपसे बोलेंगे तो बम ही पटकेंगे। अब आप सोचिए कि वो आपके अनुकूल हो जाए, तो वातानुकूलता हो ना हो अथवा वात अनुकूलता हो ना हो, सुख या दुख के लाभ में भला छुपा रहता है, देखने से दिखता है संता की आंखों से, स्वयं लाभ शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है लाभ भला। बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि हम अपने जीवन में समता परिणति का विकास करना चाहते हैं, भैया समझे लास्ट लास्ट सुनो, बहुत अच्छी चीज है, फिर छोरी तुम्हें डालो हमें भी सुनेंगे। हाँ देखो छोटी बिटिया है और खेलने लग गए सब उसके साथ, काफी आ रही है। अब देखो बच्चे तो होते हैं, छोटे बच्चे जहाँ पहुंच जाए तो 8-10 लोगों को कब्रे गीजे में ले लेते हो, इसलिए छोटे बच्चों को प्रोफेसर समा में नहीं बैठा जाता, नहीं तो वो खेलने लग गया तो हमें जरा कोई नहीं तो वो नहीं खिलाने लग गया था। ये बड़ा मैं आज के परिवेश में कहना कि तनाव की स्थितियां बहुत बनती हैं, पर कभी परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं होती, तो कभी कोई व्यक्ति अपने अनुकूल नहीं होता, तब इन परिस्थितियों में हम बहुत आकुलित हो जाते हैं, पता नहीं कैसा घर है कैसा परिवार है कैसे लोग हैं। अब लेकिन गुजारना तो वही है, वही मकान वही परिवार जन, जिंदगी उसी में गुजारना है, छोड़ नहीं सकते, और हमेशा रोगी रोना भी अच्छा नहीं है। तो आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया है कि सुखिया दुख के लाभ में भला छुपा रहता है। एक कहावत हमने आप लोगों, जो हुआ अच्छा हुआ तो जो होगा तो अच्छा होगा, ये कितना महत्वपूर्ण सूत्र है, अपने मन की निराकुलता के लिए बहुत बढ़िया सूत्र है। और हमने सुने एक प्रसिद्ध कहानी, आप लोगों से राजा था उसका मंत्री था, दोनों निकले, सुना है ना सामने, वो घोड़ा भी चढ़ गया राजा की उंगली कट गई, तो बड़ी तरह जो हुआ तो अच्छा हुआ, ये सबने सुना है। अभी कभी दैनिक भास्कर में एक खबर आई थी, एक व्यक्ति वो जिम्बाब्वे का था, उसने कहा कि मैंने अपने बुजुर्गों से बात सुनी थी, जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा अच्छा होगा, आचार्य महाराज ने एक कहते डोंट माइंड इट, इस पर इंदौर में आते उसने एक प्रवचन किया था, इस पर आके जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ, डोंट माइंड इट, ज्यादा इस विषय में मत सोचो, जो हुआ चलो हुआ, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ज्यादा सोचने से हमारे भीतर तनाव और पागलपन बढ़ता है। तो जिम्बाब्वे के व्यक्ति ने अपने जीवन की सत्य घटना लिखकर हमने सुनाई होगी एक बार, ध्यान में हाँ, तो वो क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है तो सुनाई तो है एक बार आप लोगों को सुबह या दोपहर क्लास में, वो व्यक्ति जो है किसी काम से घर से अपनी कार लेकर के अकेला व्यक्ति बाहर निकला, और जब वो बाहर निकला और कुछ घंटों बाद उसने देखा कि अपने आप को जो है उसने एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया, और वो उसको पड़ा हुआ पाया तो अरे मैं क्या गया, देखा उसने कार चली गई, मेरा सब लुट गया और मैं तो बिल्कुल कंगाल जैसा हो गया। अब उसको बड़ा विकल्प हुआ, उसने कहा लेकिन अब ज्यादा सोचो नहीं, जो हुआ तो अच्छा हुआ, देखते में उसने कॉल वॉल किया, पता किया वहां पर मैं कहाँ हूँ, तो लोगों ने बताया आप यहाँ पर पढ़े, अच्छा तो मेरा घर तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं। वो जैसे तैसे पुरुषार्थ करके अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचा तो देखा वहां से सब लोग रो रहे थे, और इस सब यात्रा मर्थी सजी हुई थी, उस अर्थी को ले जा करने के लिए सब लोग वहां पर तैयार बैठे थे, और लोग रोना धोना मचा हुआ था। जैसे वो गया तो बोले क्यों भैया क्या हो गया, तो बोले इनका जो लड़का था तो कल निकला होगा तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में कार जो है जल गई पूरी, और कार में डेथ बॉडी निकली, और ये डेथ बॉडी का अंतिम संस्कार। वो कहने लगा भैया वो तो मेरी कार से, मैं तो जिंदा ही खड़ा, सब घबरा गए, भूत तो नहीं आ गया। बोले भैया मैं भूत नहीं हूँ, मेरी कल ऐसा जब मैं यहाँ से निकला तो रास्ते में किसी ने मुझे हेल्प मांगा और मैंने उसको हाथ दिया, तो मैं अकेला तो था, गाड़ी खाली खाली थी, मैंने उसको उसने सहारा दे दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या उसने मेरा किडनैप किया और जो भी उसने मुख में संगाया और वो मुझे उतार करके रास्ते में फेंक गया और गाड़ी लेकर के भाग गया, किंतु जैसे ही कुछ कदम वो आगे बढ़ा उस गाड़ी में आग फस्ट हो गया और वो गाड़ी जल करके वहां पर राख हो गई। तो जो व्यक्ति ने गाड़ी उससे छुड़ाया था वो व्यक्ति अकेला उसमें बैठा था, उसको जो जल गई थी बॉडी, तो बॉडी जलने के बाद ये इसकी है या किसके, समझ में नहीं आया, क्योंकि गाड़ी का नंबर जब देखा तो इसमें उस व्यक्ति की गाड़ी है। पुलिस वाले उसके घर पर सूचना पहुंचाई और वहां पर जब वो पहुंचा तब उसने लिखा कि मुझे लगा कि वास्तव में बुजुर्ग जो कहते थे तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, डोंट, ऐसा ही होना था। शाहपुर की घटना में आपको बता देते हैं, हम हर बार पहुंचने बताते हैं लेकिन हमें याद नहीं है, जब हम यहाँ पर आए थे मुनि महाराज से आचार्य साथ आए थे, शायद 98 में आए थे, जाकर से 2000 के पहले एक बार आए हैं, आते थे कुंडलपुर जा रहे थे, नहीं 97 में हमारी मुनि दीक्षा हुई, और 97 से 2000 के बीच में आचार्य एक बार यहाँ आए हैं, सागर आए थे, सागर से नहीं नहीं 2000 नहीं 97 में हमारी मुनि दीक्षा हुई और 2001 में हमारा छात्रमय छतरपुर में हुआ। ये 3 साल के बीच में ग्रीष्म काल हुआ था शायद अक्षय तृतीया के बाद। अब देख लो हमें ऐसा कोई ध्यान है, यानी नहीं समय सुना आते थे साथ नहीं आए थे, हम दोनों महाराज आए थे बंडा से साथ यहाँ पर आए थे, हाँ हम दोनों महाराज जी साहब यहाँ से पकड़िए ऐसा कुछ आए थे, हमें ध्यान है इधर जा रहे थे हम लोग कुंडलपुर के लिए। हाँ 2000 जब वो हो रहा था ना कार्यक्रम 2006 का गजरत महोत्सव, कुछ आरी का रिक्शा जब उस समय होती 58 हो सकता उस समय की बात हो। यहाँ से हम निकले और तो यहाँ पर आहार चर्या होने वाली थी, पर आहार चर्या होने वाली थी मंदिर से दोनों महाराज विधि बना के अपने जो निकले, और उस समय हम अस्वस्थ बहुत थे, दवाई हमारे साथ में चलती थी, एक व्यक्ति भैया दवाई लेके जाता था, वो गेट पे खड़ा था यहाँ पर, और अचानक बड़े महाराज जी निकले उसके पीछे हम निकले, उसको कोई काम याद आ गया, और जैसे उसको काम याद आ गया वो अंदर आया और लौट करके जब वो गेट पे पहुंचा पूछा महाराज कहाँ गए, तो उन्होंने कहा महाराज जी इस दिशा में गए। अब वो लड़का जो भी सांस में था वो इस दिशा में बहुत दूर तक गया, वहां जाकर देखा था वहां प्रशांत काका जी मिले, हमने नहीं ली, हम इस दिशा में गए थे। और इस दिशा में हम जब चौके में पहुंचे वो दवाई हमें सबसे शुरू में पानी के साथ लेते, उसके बाद दूध वगैरह लेते थे। इधर कहां चौके में आ रहे थे हमें पता नहीं, जो यहाँ बैठा उनको आया। अब वहां हम पहुंचे हैं और अब आहार शुरू हुआ, वो कहने लगे महाराज जी हाथ से आया, बोले महाराज गड़बड़ हो गया, वो मैं तो आपके पीछे खड़ा था, वो तो किसी ने मुझे उल्टा बता दिया, बड़े मारा वहां गया, पता चला महाराज। हमने कहा आपको विकल्प नहीं सर, जो वो अच्छा वो जो होगा, अब तुमने साता पकड़ना, पहले पूरा थोड़ा आहार कर ही लेन दे। फिर हमने बढ़िया थोड़ा वो भोजन ले लिया, पानी ले लिया, और उसके बाद जैसे अंजलि खोली उसने दवाई दिया तो दवाई में इतना लंबा बाल, हमने कहा बेटा इतना सा चारा तो पहुंच गया, नहीं तो पकड़िया जैसे पहुंचते। देहात तो पक्का ही था, लेकिन फिर हमें वो जो हुआ अच्छा हुआ, यदि वो व्यक्ति हमारे पीछे होता तो हमारे पीछे की जाएगा, सबसे शुरू में दवाई चलाता और पहले बॉल में आउट कर देता। लेकिन कर्म का ये देखो इससे निमित्त ऐसा बना कि वो गेट पर ही खड़ा था, अचानक उसको कुछ काम याद आया और हम जैसे निकले तो वो लौट करके अंदर आया, उससे हम निकल गए। किसी से पूछा तो उसने कहा महाराज तो इधर गए, तो उसने ये भी नहीं पूछा कौन से महाराज, लेकिन उस समय अपना पुण्य का थोड़ा हृदय तीव्र था और वहाँ वो बीच में पहुंच गया, कहने लगा महाराज आप जल्दी से दवाई दे दो। हमने कहा चिंता नहीं कर, थोड़ा सा आहार हो जाएंगे बीच में लेंगे, और थोड़ा सा आहार कर लिया, कम से कम चलने लायक काम हो गया। और फिर जैसे उसने डिब्बी खोली सीधे दवाई दी, उसमें हमने कहा देखो, हमने कहा चलो जो हुआ अच्छा, कुछ तो मिला नहीं तो जो और चला जाता। तो जो नहीं मिला उसकी चिंता नहीं, कम से कम जितना पहुंच गया उसी दिन बिहार करके तो हम लोग यहाँ से पथरिया पहुंचे थे, हमें ध्यान है। तो आज के सामने बात की घटना है, तब से हमें लगने लगी वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक सूत्र बना लिया जाए तो जीवन में इतना हल्कापन होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा। आयुर्वेद वाले डॉक्टर यही कहते हैं यदि आपको सर्दी हो रही तो बहुत अच्छा, तीन दिन तक नाक बहने दो, छेड़ो नहीं उसको, बुखार को सात दिन तक नहीं छेड़ना, सर्दी को तीन दिन तक नहीं छेड़ना, और पेट में आम होती तो 21 दिन तक नहीं छेड़ना, निकलने दो, ये शरीर का विकार आपका निकल जाएगा तो आप लॉन्ग टाइम का बीमार नहीं होंगे। आप क्या कहते सुबह नाक बही नहीं, शाम को एक टेबलेट खा ली, अब वो भीतर भीतर सूख गई और जाकर के साइनस हो जाता है। इसलिए तीन दिन तक तो नाक सर्दी तो बिल्कुल मत छेड़ो, जितनी गहरी निकलने दो, इसके माध्यम से शरीर का विकार निकलता है। तो बहुत जल्दी हमने जो रिएक्शन करते हैं मिला तुरंत उसमें का ये प्रतिकार, तो बीमार बुखार आ रहा है तो आने दो, जल्दी जल्दी मत करो, नहीं तो पुनः वो बुखार यदि पूरी तरह नहीं निकल पाया। आजकल ये बताते ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ा लेते हैं और बिल्कुल सुबह तक पंच पंच हो गया वो, और फिर शाम को फिर बुखार आ गया, एक दवाई दे देंगे बुखार ठीक हो गया लेकिन पुनः आ जाता है। ये बुखार आपके शरीर में भीतर बैठ जाएगा तो वर्षों के लिए आपको शायद यही चर्चा पता होगी, लालू साड़ी वाले जो आप कह रहे हैं संत कुमार रिश्तेदार, लालू साड़ी वाले सागर में, अरे सागर में लालू साड़ी वाले ना, वो उनके जो वो कैसा धार्मिक परिवार था, हम लोग जब से उनके यहाँ पे दो दो महाराजों के हार हुए, सीए प्रिया प्रियंक का नाम है सीए, हाँ उनके जो पिताजी वो कैसे एक्सपायर हो गए हमें ज्ञान है कि उनको जब हमारा चात्र मास 98 में था उनको बुखार आया था, और बुखार आया था तो क्या उनको चौका लगाना आहार देने बड़ा विकल्प होता था, तो जल्दी से उन्होंने दवाई वगैरह बुखार की दवाई ले ली, और दवाई लेने के बाद बुखार कम नहीं हुआ तो दूसरी और हाई डोज दे दी, और डॉक्टर ने ये सोचा इसको जल्दी, और वो हाई डोज जहाँ उन्होंने ली उनके दिमाग में चढ़ गई गर्मी, और उनको दो तीन महीने तक कुछ भी मतलब शांति नहीं, फिर वो नेमावर में हमारे पास पहुंचे, हम लोग आकर्ष वहीं पर थे, बताया पिताजी को समझ में आ गया कि इनको दवाई का जो उष्णता पावर ज्यादा हो गया इसलिए इनको गर्मी बहुत ज्यादा चढ़ गई। फिर क्या करें, तीन चार दिन वहाँ रुके, बहुत अच्छा लगा, हमने कहा जब आपको यहाँ अगर निराकुलता तो यहाँ रुक जाओ, किंतु वो नहीं आया, यहाँ पर बताते वो गर्मी जो उनको चढ़ी और दुकान आदि में बैठना उनका बंद हो गया और मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हो गए, आके रहने जा करके ट्रेन के नीचे अपने जीवन को समाप्त कर लिया। कैसा वो परिवार से कि हम जब वहाँ पे भाग्योदय बीमार थे, आठों दिन उसी भाग्योदय की ऊपर जो पहले नंबर की बिल्डिंग थी वहीं हम इतने बुखार हमको आया था कि वहीं पड़ोस के कमरे में आहार होता था और सामने आचार्य महाराज रहते थे। आचार्य महाराज भी कई बार बाहर खड़े खड़े आहार देखते रहते थे क्योंकि समय क्या चलना। तो 8-10 दिन उन्होंने वहाँ पर वही उनके जो बेटा बेटी थे और जो थे पूरा परिवार सेवा में रहा। तो जब उनकी दशा सुनी तब हमें लगा कि देखो अज्ञान एक आहार पान वगैरह सब कुछ करा रहे हैं किंतु सत्य ज्ञान का पहला आधार हो गया। इसलिए हम बार बार कहते दान पूजन आदि अभिषेक के साथ साथ सत्य ज्ञान भी होना चाहिए जिससे हम विचलित ना हो। अंततः अनुकूलता में तो भगवान हमारे इससे अच्छे हमें लगते हैं और प्रतिकूलता हो जाए तो भगवान भी बुरे लगने लगते हैं, मंदिर बुरा लगने लगता है, गुरु बुरे लगने लगते हैं। ये सत्य ज्ञान के अभाव में ऐसा होता है। और जब हमने सुना छोटे छोटे उनके बच्चे अब तो बड़े हो गए लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई, वो सब थे और वो पूरा परिवार और जुटी दुकान आदि और उनको क्या परिणति सुबह सुबह निकले और उन्होंने तो ये हो गया कि वो जो दवाई गए। इसीलिए हमारा कहना जल्दी जल्दी कुछ नहीं करो, एकदम आप जो स्वस्थ होने का विचार बना रहे हैं बहुत हानि का। तो बुखार आ गया बहुत अच्छा है, सर्दी हो गई बहुत अच्छा है, सिर दर्द हो रहा है वो भी अच्छा है, सिर दर्द होना बोला भी अच्छा है। अब हो ही है तो थोड़ा सा साता रखो, थोड़ी देर में हर बीमार अपना शरीर जैसे सुबह सुबह गंदगी बाहर निकालता है, मलमूत्र आदि निकालता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे अपने शरीर में विकारी तत्व होते हैं जो कि 2 महीने में, किसी को साल भर में, किसी को 6 महीने में वो सर्दी खांसी आदि के माध्यम से निकलते हैं। उनको निकलने दो, कभी भी अंग्रेजी दवाइयां ना लेकर के बढ़िया काली में शॉर्ट से काली ले लो और 2-3-4 दिन चलने दो, अपने आप आते से आग होती ना। 21 दिन तक आग को नहीं छेड़ना, 7 दिन तक बुखार को मत छेड़ो, थोड़ा बहुत वो धीरे निकल रहा हो तो निकलेगी। इतनी धैर्य क्षमता हमारे पास नहीं है, पहले तो था लेकिन अब धीरे धीरे ये। इसीलिए यहाँ पर सुख या दुख के लाभ में भला छुपा होता है, देखने से दिखता है क्षमता की। स्वयं लाभ शब्द कह रहा है लाभ भला, अंत अंत में यही कहना है बेटा, इसी में लिखा जो है अंत अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली नहीं, छली मछलियों की छली नहीं बनना। ये तो माटी क्या कह रही है मछली को, ये तो निश्चित है कि तुम्हारी अभी चल लिखना का समय नहीं है क्योंकि अभी युवावस्था है, चल लिखना ऐसी नहीं होती। उप सर्ग दुर्भिक्ष जरा से जाया, कुछ कारण होते हैं तभी गुरु महाराज चल लिखना देते हैं। और उसने समझ लिया अभी सर लिखना संभव नहीं क्योंकि काय और कसाय दोनों को कैस करना होता है। और वो उसने समझाया कि सुख दुख में पहले समता परिणति लाना सीखो, जो मिला है जो प्राप्त है सुख पर्याप्त है। क्या कहा, इतना सा सूत्र बस आपको देखना कितनी जिंदगी को बदल देगा। जो वो अच्छा जो है जो प्राप्त है अपना भाग जितना था उतने ही तो मिलेगा। रावण को 3 खंड की वो लंग 3 खंड का राज मिला, विभीषण को कुछ नहीं मिला। अपना अपना पुण्य है, एक भाई को करोड़पति हो गए तो दूसरे भाई के पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं है, अपना अपना भाग्य है। क्यों हम ईर्ष्या करें, क्यों हम दीनहीन बने। जितनी चादर हो उतना पैर पसारो, ये नीति बहुत अच्छी है ना। जितनी ऐसे बोलते ना, जितनी चादर उतने पैर, जितनी अपनी क्षमता उसमें अपन एडजस्ट करने का प्रयास करें, ज्यादा दिखाने का प्रयास ना करो, कर्ज लेकर के जीवन जीने का प्रयास ना करो। आज तो जमाना बढ़ गया हर चीज कर्ज में, और जितने नौकरी पेशा वाले होते हैं ना, गाड़ी भी लोन से, मकान भी लोन का, फ्रिज भी लोन से, आते ना क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं ना उसको, इनकम टैक्स में छूट मिलती है? ब्याज नहीं लगता? हाँ वो कुछ, लेकिन फिर भी हमारे बुजुर्ग रहते थे कर्ज लेकर के घी खाने से अच्छा है बिना कर्ज के पानी या तेल के साथ रोटी खा लो। कर्ज का सुख कभी भी सुख नहीं होता, जो व्यक्ति कर्ज में दबा है और चक्रवर्ती ब्याज होता है। पर ये स्थिति होती है, आज तो हमने देखा सर्विस लगी नहीं, कितना पेमेंट लड़के का 40,000 से महीना कमाता है, लेकिन तुरंत वो एक कार खरीद लेता है। कहाँ से कार खरीद लिया? किस्त में, किस्त कहते ना, क्या कहते हैं, हाँ ऐसी मतलब किस्तों में। अब वो अपने आप उससे लेकिन जो कार उससे 4 लाख की मिलना है, इस तरह से वो 6 लाख की कार पड़ जाती है, 2 लाख, और वो उसका उसमें कटता चला जाता है। तो ये कर्ज लेकर के आज सबको जीने का जो बन गया, और जितना मानना जो बड़े बड़े आप जॉब या सर्विस वाले कह रहे हैं ना, ये लड़के कुछ नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी नहीं बताता। अभी दोपहर को एक भैया आया था, बैंक में जॉब करता है भोपाल में, बता रहा सुबह 9:30 बजे जाता हूँ, तो शाम 9:30 बजे ऑफिस का टाइम है, निकलता तो 8:30 बजे है, 15 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है, और वो शाम को 9:30, 10, 11, 12 भी बज जाते हैं बैंक में, 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी। नौकरी वाला लड़का मिलेगा तभी ब्याह करें, नौकर नौकरानी के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो रही लोगों की। हम तो कहते जो व्यापारी सुखी है वो नौकरी वाला नहीं, व्यापारी तो खेलता, लेकिन आज हर व्यक्ति की टेंडेंसी हो गई है कि नहीं लड़का नौकरी, वो क्या करते हैं फिर नौकरी करते हैं और 4 दिन बाद भागे आते हैं। और नौकरी वाला कब अपना मकान तो बना ही नहीं सकता, माता पिता को उसका मकान खरीद के देना पड़ता है। जो 50,000 रुपए महीना भी कमा रहा है, जो लड़का ध्यान रखो 5,000 भी महीने का नहीं बचा पाता। इसीलिए नौकरी तो सुबह भी हमने कहा था, नौकरी वालों को आप जितना अच्छा मान रहे हैं, हमारा कहना है कि उतनी पराधीनता है। भले अब देखो 11-12-15 कोई ड्यूटी होती का, अब कहो बाप महाराज व्यापारी सुबह से लगा है, लेकिन जब चाहे तब सड़क गिरा सकता है, जब चाहे दुकान बंद कर सकता है, महाराज या तो लेने जा सकता है। वो तो संडे वाले होते हैं, मरोगे संडे में तो आ जाएंगे, निकल ही आएंगे। सारे के सारे विवाह है, पार्टी है, जन्मदिन कब? रविवार को। और बाकी दिन आप मर भी जाएंगे तो आए सारे, आज तो ऑफिस है, है? क्या करोगे? इसीलिए नौकरी जो है ना, ये अपन भले समझ रहे, उस बच्चे ने जो है बताया 15 किलोमीटर जाना, 15 कई बार 9:30-10 बज जाते। अब जो परिवार है वो संस्कारित बेटी है तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो मतलब की बेटी है 15-10 घंटे अगर उसका पति या परिवार में कोई भी नहीं है तो कैसे सारा दिन व्यतीत होगा? एक फ्लैट है, मात्र फ्लैट किसी का पता ना, छत आपकी ना जमीन आपकी, जिसकी डिग्री है माचिस की डिग्री, जैसे क्या 12x15x15 जिसमें एक फ्लैट होते हैं, तो उसमें किचन है, उसी में लैट्रिन बाथरूम है, उसी में बेडरूम है, उसी में ड्रेसिंग रूम है, उसी में स्टोर रूम है, सब उससे ही है। अब क्या करें बेचारे, नौकरी कर रहे हैं, जितने में अपने यहाँ पे साफ और में सकन्ना होगा उतने दो पूरे घर ले गए। हम ये तो जितने में अपने नहाने धोने के पड़े रहते ना, इससे तो यूं छोड़ देते अपन मकान में, उतने बेचारे जिंदगी गुजारे। तुम कहते हमारा लड़का बड़ा सर्विस कर, अभी जैसे इनका लड़का जापान में है, वो नाती बोले जापान में 18 लाख होता है, उसके में कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी सोच रहे हिंदुस्तान का 18 लाख, वहाँ उसको 5,000 मिलते हैं, 15 दिन के पराठे एक दिन में बना के ले आता, वो शेष पेट के खाता 15 दिन तक। बता रहे 15 दिन के लिए पराठे इकट्ठे बना लेते हैं, और वो 15 दिन तक निकालेगा, गर्म करेगा, खा जाएगा, गर्म गर्म रोटी का काम ही नहीं। इसलिए वहाँ मात्र ब्रेड चलती बताते हैं रोटी पर। अब अपन खुश है कि जापान में, लेकिन उसके साथ जिन घर में सब कुछ छूट गया, बड़ा विचित्र है। इसलिए यहाँ पर कह रहे अपने जीवन काल में छली मछलियों की छली नहीं बनना, और विषयों की लहरों में भूल कर भी मत छली बनना। छली मछलियाँ अर्थात छल कपट ही जिनका जीवन है, वो समझा रही है वो मछली माटी को भी अब बेटा तुम्हें जाना तो वही है, लेकिन अब समझ लो कि यदि अपने जीवन को छली मछलियों से छल कपटी मत बनना, क्योंकि हम दूसरे को छल करके उसको नहीं छल रहे हैं, स्वयं अपने आप छले जा रहे हैं। और विषयों की लहरों में भूल कर भी मत छली बनना, पांच इंद्रियों के विषयों में कैसी चंचलता उत्पन्न हो रही है। आप शाहपुर में बैठे हैं तो आप ठीक ठाक हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर निकलो, हमने तो एक ही चात्रमास भोपाल में किया 2013 में, वैराग हो गया किससे? आप लोगों से। अब ये बातें कुछ कॉलोनी और भी अच्छे शांति वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ जब हम रहे 4 महीने सिवाय एक ही चर्चा, महाराज हमारा बेटा ऐसा, बेटी ऐसी, लड़का है, मतलब वहाँ पर अपन कुछ चर्चा धर्म की करने का माहौल बनाना चाहो तो बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि एक ही मार्ग विषयों की ही लहर चल रही है। और वहाँ पे जितने भी व्यक्ति हमारे पास लड़के आए चाहे लड़की आए, महाराज आशीर्वाद दे दो काय के लिए नौकरी लग जाए, और इससे ज्यादा कुछ समझना नहीं। तो क्या 7000 MBA किया हुआ लड़का, एक इंजीनियर लड़का हमारे पास आता था, आज 7000 रुपए महीने नौकरी कर रहा था। फिर हमने उसको कहा बेटा तू 7000 में क्या करता होगा, बोले महाराज नौकरी करना है, पूरी पढ़ाई की है, पांच जो भी खर्चा हुआ 4-5 लाख कैसे लौट करके आऊं। तो हमने कहा भैया तू मास्टर बन जा। फिर उसको समझो मुझे पढ़ाने में रुचि, हमने कहा मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे पढ़ाना, बैठ जा। उसको पढ़ाना सिखाया हमने, कहा कुछ नहीं टेंशन नहीं, तो जिस दिन पहला पीरियड कॉलेज में लेगा तो लोग तुझसे हंसेंगे तो हंसने देना, और कह देना मुझे जितना आता बस मुझे ज्यादा आता नहीं है, टेंशन नहीं देना, अपनी कमी सहज स्वीकारो, दुख दूर हो। उसने बिल्कुल ऐसे किया, जैसे वो पहले कॉलेज में गया तो उसको वहाँ पर 10000 रुपए की नौकरी लग गई, वहाँ से उसके पास में कॉलेज था। तो हमने कहा 7000 इंजीनियर मिला तो यहाँ बैठा चलो कौन बहुत अच्छा है, सुबह 10 बजे जाना, शाम को 5 बजे लौट के आ, सुबह पूजन अभिषेक सब होने वाला कर लेता था, दिन में भोजन हो जाता था, और वो जैसे जैसे उसने मन बनाया वहाँ जाके कॉलेज में पढ़ा। जैसे कॉलेज में पूछा लोगों ने पूछे उनके स्टूडेंट सर आप पहली बार पढ़ा रहे क्या, उनने पूछ लिया तो उसने कहा हाँ हाँ मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने का कोई अनुभव। लेकिन जब उसका धीरे धीरे उसमें अनुभव होता चला गया, अभी वो हमारे पास आया था, बोले अभी मैं बच्चों को MSc वगैरह बच्चों को ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बच्चों को मैं पढ़ाने लगा, अभी उनको लेकर के बैंगलोर गया, एक महीने रुक के आया। अब वो पता नहीं लगा मैं सुबह देव दर्शन पूजन अभिषेक सब कर लेता हूँ, शाम को मुझे भोजन पानी गाँव में है, उस शहर के चक्कर में और वो गांव को छोड़ करके चला गया था, लेकिन जो यहाँ पर उसको सुकून मिला और वो अभी हमारे पास आता रहता है। मैं बताता महाराज मेरी जिंदगी बन गई, तो उधर सुबह 8 बजे से जाता था, शाम को 6 बजे तक आता था, पर अपने 7000 में क्या मिलना। अभी भी ऐसे MBA और MC बड़ी बड़ी पढ़ाई करने वाले लड़के भी 10 और 12 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं बड़े शहरों में। अब हमें लगता है ये 12000 में क्या होगा, लेकिन वो ये कहते महाराज अब गांव को छोड़ कर के शहर में आ गए कि वापस वहां जाएंगे तो लोग जूता जूता बहुत अच्छा दिख रहा है, भीतर से तो काट रहा पूरा पैर खिल गया, लेकिन दुनिया दिख गया लड़का तो जॉब में है नौकरी कर रहा। अरे बंधु कुछ तो विचार करो, लेकिन ये एक मानसिकता जो है, तो विषयों की लहरी लहर है। आप जैसे जैसे बड़े मॉल ऑल के पास आप जाके देखो, हम भी जब वहाँ कभी निकलते थे गलियों में तो लगता था कितना बड़ा अच्छा शहर है, लेकिन सब भैया बाहर की है, भीतर अगर आपका पैसा नहीं है तो कुछ भी वहाँ सुख नहीं है। इसीलिए विषयों की लहरों में भूल कर ये मत चली, मन चंचल होता रहता है। और सुनो बेटा मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है। अंतिम बात बता दी, मासूम मछली बने रहो, सहज सरलता अपने जीवन में लाओ। जैसे हमने शुरू बताया था बच्चा जो है रोने लगता है और चुटकी बजा के मिठाई का टुकड़ा पकड़ा दिया, आंसू जहाँ पीता है लेकिन वह शांत हो जाता है। तो कसायों की परिणति हमारी जितनी जल्दी शांत हो सके उतनी जल्दी हमारी मासूमियत सरलता हमारे जीवन में आएगी। तो यही समाधि को उत्पन्न करने वाली है। हम जितने कुटिल रहेंगे उतना हमारी समाधि या समता परिणाम हमसे दूर रहेंगे। और माटी संकेत करती है शिल्पी को कि इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा और दोष के भागी तुम बनोगे। असहनी दुख जिसका फलदान होगा। जल छन गया है और जलीय जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप सुरक्षित डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी पूर्ण सावधान होकर के। और वो मछली और जो दिलछानी थी डाल करके और पुनः वो कड़ीदार बाल्टी के माध्यम से जहाँ से वो पानी आया था और वापस वहाँ पर वो दिलछानी पहुँचा देता है कूप में एक बार। और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रम में लीन डूबती सी। और जैसे वह पुनः बाल्टी को मछली को पहुँचा दे एक बार और आवाज आती है दया विशुद्धो धम्मो और वो दीवार से टकराती टकराती पुनः वो ध्वनि उपाश्रम तक आ जाती है। इस प्रकार मूक माटी कहा पहला खंड जो था संकर्ण नहीं वर्ण लाभ से यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे जो है शिविर की अपेक्षा से 10 दिन जो मूक माटी का अपन ने समय निकाला था तो समय बड़ा अच्छा और आनंद के साथ व्यतीत हुआ। आगे प्रसंग तो बहुत अच्छा है लेकिन आज 88 पेज हुए हैं, 400 पेज और हैं। 488 है इसमें, 88 पेज हुए हैं, 400 पेज और हैं। अब कैसा क्या आप लोगों का पुण्य होता है योग बनता है वैसा देखेंगे। लेकिन अभी तो शिविर कल तो चतुर्दशी है, शायद दिन भर व्यस्तता रहेंगे और फिर भी यदि नहीं है तो देखते हैं कैसा क्या महाराज जी चर्चा करेंगे। तो एक दिन में ही अपन 400 पेज पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक घंटे में 400 पेज पॉइंट पॉइंट बता देते, बाकी जंपिंग ले लेते सीधे यदि होगा तो वैसा कर लेंगे। और बाद में जो आप लोग यदि इसको पढ़ सकते हैं पर हिंदी या कुछ में पढ़ना हो तो उपासना की खाव नाम की एक पुस्तक का PDF फाइल मोबाइल में है, वो अगर आप लोग ले लेंगे कभी भी आप मुखमाड़ी संबंधी कोई भी शंका चर्चा तो हम आपको बता ही देंगे। क्योंकि हमें लग नहीं रहा कि दोपहर आदि को क्लास लगाए तो आप लोग सब इतने आ पाएंगे, महिलाएं आदि हो जाएंगी और पुरुष वर्ग को तो वैसे टाइम नहीं रहना। अब वैसे 25 कहना सुबह भी हम देखते रहे, सुबह भी क्या दशा देखो तुम्हें। क्या सुबह कितने दिन आए आप? हाँ नहीं आप, लेकिन अभी सुबह की दशा हमें बताना, हमारे जिंदगी के डब्बा होते हैं और वो भी हम जाके पहले 15 मिनट पाठ पढ़ते हैं तब पूरे डब्बा होते हैं और फिर हम सुनो। इसके लिए आप लोगों ने फिर भी खूब आनंद लिया 10 दिन। अब आप ये मुखमाटी पढ़िएगा, अभी इतना हमारा योग या मानसिक समझ में नहीं आ रही कि हम इसको आगे पढ़ाएंगे। फिर भी जिस किसी को भी अगर आप लोग इसको आगे पढ़ो, 4-5 भाई बहन जो भी भैया आप लोग पढ़ते हैं पढ़ो, जहाँ नहीं बनेगा हम आपको हिंट कर देंगे। और अलग से चाहो तो 10-15 मिनट कभी भी हम आपको अलग से बैठ करके समझा सकते हैं इस तरह, लेकिन क्लास आगे पढ़ा सके। क्योंकि सामने लोग बैठे होते हैं तो पढ़ने और पढ़ाने का अलग उत्साह होता है। क्योंकि इसमें पूरे 1.25 घंटा हमें बोलना पड़ता है और यदि पब्लिक ना हो तो रोज हमें वैराग हो जाता है पढ़ाने से। लेकिन अभी 10 दिनों में अच्छा राग बना रहा, धर्मानुराग आप लोगों की वजह से हमारा पढ़ाने का मन बन गया। बहुत अच्छा इसमें आगे लिखा है, आप लोग जरूर एक बार पढ़िएगा और जो नहीं बने हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कल यदि समय मिला तो पूरी बात बता देंगे और आज शाम को विमल बड्डे के प्रवचन। तो वो देना जैसे ना करें तो हमारी और तुम्हें दुकान बिगाड़ दो, तुम लेकर सारे चोर है तो राजा को। हाँ जल्दी सुनो, हाँ नहीं सुना भाई। ये पीछे आवाज ही नहीं आ रही उनको, अब कल शाम को सुना दिया तुम हमें, सुना दिया मैंने, सुना दें चलो जावाणी तो हमें सुना दियो, हम आपकी बात सबको बता दें। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लाले तो वाणी नक्सल धर्म सदा देते रहो तो जिन वाणी मारती तो जब जन जो तेरा करना है सुन देव भज वर्धंत को गुरु सेवा न गया धर्म कालो सदा ये मोक्ष का निकाल सदन Thank you.